ओम शांति। एक बार सब लोग मिलकर उस तरीके से हम लोग ओम शांति बोलेंगे जैसे हम सब ने सुना है कि आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ सब बोला करते थे ब्राह्मण वत्स, और अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। शांति का ये महामंत्री है जो हमें ज्ञान की सभी बातें बड़ी सहज रीति से अनुभव भी कराता है और उसको किस प्रकार से जीवन में हम धारण करके चलते रहें उसकी अनुभूति भी होती है। आज का जो विषय है, जैसा बहन जी बता रहे थे, कौन सा विषय? साक्षी और साथी। अगर दोनों विषयों को देखा जाए, साथी और साक्षी, तो दोनों थोड़ा विरोधाभास लगते हैं, क्योंकि साथी तो जो होता है वो स्थूल रीति से भी साथ देता है, और साथी को जब भी बुलाओ तब वो तुरंत ही जैसे मदद के लिए अवेलेबल होता है साथी। और साक्षी की स्थिति कैसी होती है? साक्षी स्थिति माने जस्ट साक्षी भाव, कुछ हो रहा है और हमारा जैसे उससे कोई खास लेना देना नहीं, साक्षी होकर के जो देखते रहते हैं। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों की संपूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बहुत आवश्यकता है इन दोनों स्थितियों की, साथीपन की भी और साक्षीपन की भी। कैसे आवश्यकता है? बाबा ने बताया है, समय प्रति समय बाबा आगे आने वाली घटनाओं का आभास भी कराते रहते हैं, और बाबा बताते हैं कि किस प्रकार से उन परिस्थितियों का हम सामना भी करें, और केवल सामना ही न करें बल्कि विजयी भी उसमें हो, तब तो फायदा है। इसीलिए ये जो परिस्थिति है, वर्तमान समय आने वाली है और होकर भी गई है, बाबा ने काफी हद तक हम लोगों को पिछले 2 साल में सभी को अनुभव भी कराया है। कौन सी स्थिति का? ये कोविड की भी परिस्थिति जो गई है उसका भी अनुभव कराया है। तो इस कारण से, और अभी बाबा समय प्रति समय बताते भी रहते हैं कि अभी बच्चों को वर्तमान समय दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है। कौन सी दो शक्तियों की है? और बाबा ने कहा कि परक शक्ति कहो अथवा निर्णय शक्ति कहो, इसकी अभी वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो अब माया की स्थिति परिस्थिति आएगी तो हम सब लोगों को इस बात का तो अनुभव है, जब से ज्ञान में आए हैं माया का अनुभव होता ही है, जानते हैं जानते हम कि माया किसे कहते हैं, माया। और अभी जो माया की परिस्थितियां आएंगी वो उस स्थूल रूप में नहीं आएंगी जिस स्थूल रीति में हम सब जानते हैं और अनुभव करते हैं। मानो क्रोध आया, अहंकार आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, किसी से विचार का मतभेद, लड़ाई झगड़ा, ये परिस्थितियां आई तो इनका स्वरूप ही नेगेटिव है, तो इसीलिए इनको तो हम समझ जाएंगे कि ये माया है। लेकिन माया आए ऐसे स्वरूप में जिसका रूप तो बहुत बहुत मीठा हो, ज्ञानी जैसा हो, लेकिन हो माया, समझ रहे हैं इस बात को? किसी के प्रति बहुत स्नेह भाव आ रहा है, प्रेम भाव आ रहा है, तो हम समझते हैं कि बाबा ने तो कहा सबसे स्नेह से प्यार से रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो स्नेह भाव कोई दैहिक आकर्षण के रूप में अथवा ऐसे रूप में परिणत हो जाए जो हम लोगों को बाबा से दूर करने लगे, तो वो भी माया का जैसे बहुत बहुत मीठा रूप है। तो इस कारण से देखना चाहिए अपने को हर परिस्थिति में। इसीलिए बाबा कहते हैं हरेक से स्नेह भी हो, प्यार भी हो, लेकिन ऐसा भी न हो कि उसको कोई बात कहे बिना हमारे दिल को आराम न रहे और उससे हमारा आकर्षण बढ़ता रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को ये देखते रहो इस बात को भी। कबीर दास जी ने भी जैसे कहा है ना, हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो किसी से इतना दोस्ती हो ऐसा हो कि उसको हम सब बात कोई बात बनाए बताए बगैर चैन ना आए, और किसी से बैर भी ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो कि बस उसको देखते ही हमारे मन में नेगेटिव भावनाएं पैदा हो, बदले की भावना पैदा हो। इसीलिए इसमें ये देखना है हमें अपने को कि हमारा कौन सा भाव है। तो साथी और साक्षी जब हम देखते हैं तो साक्षी का तो भाव बाबा इसीलिए खास कहते हैं। किस लिए कहते हैं साक्षी भाव? क्योंकि अंत समय ऐसी परिस्थितियां आनी हैं जो बाबा ने बता दिया है हम सबको, विशेष करके भारत में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो कि बहुत ही भयानक भी होंगी और दूसरे रीति से वो परिस्थितियां जो हैं, वो परिस्थितियों को हमें बहुत साक्षी भाव से देखना होगा। किसी प्रियजने की मृत्यु हो रही है, चोट लग रही है, खून बह रहा है, हाहाकार हो रहा है चारों तरफ, तो ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जब अर्थ को एक प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाबा ने बताया है। तो इसीलिए साक्षी भाव भी रहना चाहिए, नहीं तो अपने प्रिय जन की कोई भी शारीरिक व्याधि देख करके बहुत कष्ट होगा। तो साक्षी भाव हम कैसे रखें, तो उसके लिए वास्तव में मोटे रीति से कुछ चार पांच बात है। एक बात है साक्षी भाव के लिए, साक्षी कौन होता है? आत्मा जैसे ना, साक्षी दृष्टा कहते हैं ना, तो आत्मा जो है रहती है प्रकृति में, और हम दृष्टा देखने वाली जो है वो तो आत्मा है ना, तो इसीलिए साक्षी दृष्टा। दूसरी चीज है साक्षी दृष्टि, वो है ये आंखें। जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की के पास जाके आप खड़े होकर के देखते हैं, तो देखने वाली तो आत्मा है, दृष्टा आत्मा है, लेकिन थ्रू इन दृष्टि के द्वारा, आंख के द्वारा देख रही है, तो ये साक्षी दृष्टि हो गई। लेकिन महसूस करने वाली कैसा क्या देख रहे हैं, वो दृष्टा वो आंख है। तो साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टि। फिर तीसरी चीज है दृश्य, जो हम देख रहे हैं, कार में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में, दृश्य पास होते रहते हैं, वो दृश्य में हम अटकते नहीं, दृश्य चलते जाते हैं, हाँ अच्छा है, खराब है, ऐसा है, वैसा है, बस थोड़ा देखा कुछ सेकंड, इतनी देर में दृश्य भी पास हो गया और हम भी आगे बढ़ गए। तो एक होता है दृश्य जो इन आंखों से देखते हैं, और दृश्य जब देखते हैं ना, तो दृश्य का प्रभाव कैसा पड़ता है, वो चौथी चीज है दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड कैसा है। एक ही दृश्य किसी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, और एक ही दृश्य वो उसके लिए नेगेटिव हो सकता है दूसरे के लिए। तो इसलिए दृश्य पास होता है, दृश्य हमारे ऊपर कोई भी परमानेंट प्रभाव न डाल सके। तो इसीलिए साथी और साक्षी दो विपरीत चीजें हैं, लेकिन दोनों की बहुत बहुत संपूर्ण बनने के लिए आवश्यकता है, साथी और साक्षी। तो ये साक्षी की ये, और पांचवी बात जो है तो क्या है, जो साक्षी दृष्टा हम बनेंगे अंत तक, वो बनेंगे किस आधार पर, दृष्टांत के आधार पर। साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टि और दृश्य और दृष्टिकोण और पांचवा जो दृष्टांत, हमारे जो दृष्टांत लिखे जाते हैं भक्ति मार्ग में, द्वापर युग से लिखे जाते हैं, वो इसी आधार पर ही लिखे जाते हैं कि हमने कोई भी दृश्य को कैसे देखा, हमारा क्या दृष्टिकोण रहा, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, उसका कितना प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, जीवन के ऊपर, और उसके आधार पर फिर दृष्टिकोण जीवन के अंदर वो दृष्टांत लिखा जाता है। तो इसीलिए एक तो हमें साक्षी दृष्टा बनना है, कोई परिस्थिति आए, दृश्य आए, बस दृश्य देखा और अपना हमारा दृष्टिकोण इतना पॉजिटिव हो कि उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उसका हमारे ऊपर जो भी प्रभाव हो वो सकारात्मक ही हो दृष्टिकोण। तो इसीलिए एक हमें ये देखना है साक्षी दृष्टा हो करके, अल्टीमेटली हमें साक्षी दृष्टा बनना है हर परिस्थितियों के लिए। तो अभी से ही हम अभ्यास ये करते रहे कि दिन भर में हम जो भी दृश्य देखते हैं, कोई व्यक्ति आता है जिससे हमें बहुत स्नेह है तो उससे तो हम बड़े प्यार से बोलते हैं, स्नेह से बोलते हैं, और जिनसे उतना स्नेह नहीं है, जो हमारे ज्ञान मार्ग में बाधक बन जाता है, कई बार निगेटिविटी पैदा करता है, तो सामने से भी आता है तो हम थोड़ा रास्ता बचा के निकल जाते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं है। तो ये जो है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो बताया बाबा भी चाहते हैं, ये देखना है एक तो अपने को कि ना तो मेरी किसी से बैर भावना हो और ना ही किसी से अति मित्रता हो। तो क्या होगा, ये धीरे 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 साक्षी दृष्टा हम होते जाएंगे तो जो भी दृश्य देखेंगे, और हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल हैं, गुलजार दादी को भी जिन्होंने देखा, बस बिल्कुल जैसे कि कुछ भी देखते थे, हाँ बिल्कुल जैसे न्यूट्रल टाइप के। बाबा को हम देखते थे, कोई भी बात आती थी, मुझे याद आती है साकार बाबा के साथ तो हमें 6-7 साल रहने का मौका मिला। एक बार कहीं आप लोगों ने भी सुना होगा, कलकत्ता में कोई वहां पर ना प्रदर्शनी वगैरह हम लोगों ने टेंट में लगाई, लेकिन किन्हीं जो थोड़ा दुश्मनी जैसी रखते थे उन्होंने आग लगा दी, प्रदर्शनी जल गई, टेंट भी जल गया। तो सबने कहा, जो हमारे पास 2-3 बड़े बड़े वकील थे विशेष करके कानपुर साइट के ही, तो उन्होंने कहा बाबा हमें उन पर केस करना चाहिए, हम जानते हैं, हमारे पास फोटोग्राफ है, हमारे पास उनके मतलब लिविंग वो है पूरा, किस तरीके से उन्होंने करी, तो हमें केस करना चाहिए और हम 100% उस केस को जीतेंगे। लेकिन बाबा एकदम जैसे का सुनते रहे, फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे देखो, बाप कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, और हमें ना तो इसमें ये होना चाहिए कि हमें केस करना चाहिए क्रोध में आके उस दुश्मनी के भाव से, निगेटिविटी से, और न ही खुश होना चाहिए कि हम केस जरूर जीतेंगे और फिर आगे से ये नहीं करेंगे। संभाव सबके अंदर रहे, तो एक तो ये दृष्टिकोण हमारा इसके अंदर साक्षी दृष्टा के अंदर ये होना चाहिए, और साथ ही साथ साथी भाव कैसे होगा हमारे अंदर। बाबा ने कहा अब परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो माया का बड़ा मीठा रूप आपके सामने आएगा, माया का मीठा रूप, और कोई जब परिस्थिति आती है, बाहर से कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें लगता है अरे ये क्या हो गया। तो कोई अगर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो वो आती है बाहर से स्थूल रीति से, और माया आती है अंदर से, ये समझना चाहिए। नहीं तो हम कोई प्रॉब्लम भी आती है उसको भी हम माया बोल देते हैं, लेकिन नहीं, कोई मानो हम सेंटर जाने के लिए तैयार हुए, गुरुवार है, जा रहे हैं, और बस बाहर निकले, देखा तो हमारे गाड़ी में पंचर है, कार में, स्कूटर में या साइकिल में। बहुत सुबह का ही टाइम है, अभी अंधेरा ही है, बहुत कोशिश करते हैं, रिक्शा भी नहीं मिलता, कुछ भी प्रॉब्लम, अरे ये कैसी माया आ गई ये। तो ये प्रॉब्लम, समस्या आई है, विघ्न आया है। तो विघ्न में और माया में क्या अंतर है? विघ्न बाहर से आता, ये विघ्न आया है, जो बाहर सेंटर तक जाने में उसने बाधा डाली है, और फिर उसके परिणाम स्वरूप जो मन के अंदर अलग 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 प्रश्न होते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसे जाएंगे, क्या वो अभी तो बहुत देखा, रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, आदि आदि बहुत प्रश्न मन के अंदर पैदा हो रहे हैं, वो जैसे माया है। तो कमजोर जो संकल्प हैं अंदर से जो आते हैं वो है माया, और बाहर से जो ये आया ये है विघ्न। तो विघ्न और माया में एक तो ये अंतर समझना चाहिए। तो इस रीति से जब ये आते हैं तो पहले ये देखना है कि विघ्न तो आएंगे, अंत तक आएंगे। तो बाबा ने कहा परिस्थितियां जो हैं वो आएंगी ही आएंगी। जब से आप लोग भी, हम सब लोग ज्ञान में चलना शुरू किया है, परिस्थितियां तो आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, विघ्न आते हैं, लेकिन वो विघ्न हमें ये देखना है कितनी देर तक हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, यानी कि संकल्प कितने निगेटिव लाते हैं, माया कितनी आती है पहली बात, दूसरी बात उस माया को मैं अपने योग बल से पार करता हूँ या किसी की मदद लेकर के पार करता हूँ, तीसरा वो माया बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है या शॉर्ट टाइम तक, एकदम आया थोड़ी देर आई, चलो बाबा ने कहा है ये सब तो आते ही रहेंगे, ड्रामा की बिंदी लगाओ बाबा ने कहा है और वो लगा के हम खत्म कर दें, या फिर बहुत समय तक वो आती रहे, बार बार वो प्रॉब्लम हमारे मन को विचलित करती रहे, कितने समय तक आई वो। तो ये देखते हुए चलना है, और अपने को ये देखना है, बाबा ने बता ही रखा है कि किस तरीके से बिंदी लगानी है, किस तरीके से माया को कंट्रोल करना है। कई बार हम शक्ति को बुलाते हैं, संकल्प चल रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मानो किसी के साथ हमारी कहा सुनी हो गई, उसे हम बस विचार बहुत चल रहे हैं, हम बुला रहे हैं सहन शक्ति, आओ आओ सहन शक्ति, मदद करो, सहन शक्ति नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? हाँ, विचार चल रहे हैं, लेकिन जब बुला रहे हैं और हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो क्यों नहीं आ रही है आत्मा? आत्मा क्या नहीं है? हाँ, मतलब क्या है कि मुख्य बात यह है, किसी भी चीज को हम जब सर्वन को भी बुलाते हैं तब आते हैं, या उनको कोई प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, जब तक अपनी सीट पर है वो ऑर्डर करेगा तो सब उसका ऑर्डर मानेंगे, और जब वो सीट पर नहीं है, वो जितना भी ट्रांसफर हो गया उसका, रिटायर हो गया, चला गया, वो जितना भी ऑर्डर करेगा कोई उसकी बात नहीं मानेगा। इसीलिए हमें ये देखना है कि हम पहले अपने स्वमान की सीट पर बैठकर उसे ऑर्डर करते हैं, बाबा ने बहुत सामान, एक बार बाबा ने बोला था 100 सामान से ज्यादा की लिस्ट मैंने दी हुई है, बस मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कल पहले भी मैं विजयी हुई थी, अभी भी मैं इस शक्ति को ऑर्डर कर रही हूँ, ये शक्ति आएगी और मानेगी तो और इस प्रकार मैं विजयी होंगी, मैं आत्मा हूँ, पवित्र प्योर आत्मा, और जब मैं ऑर्डर कर रही हूँ किसी शक्ति को, वो शक्ति तो मेरी कर्मचारी है, मैं आत्मा पावरफुल हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ और मन मेरा मंत्री है, बुद्धि मेरा सेनापति है, ये सब मेरे कर्मचारी हैं, ये स्थूल कर्मचारी हैं, हाथ पैर और मन बुद्धि संस्कार, ये मेरे सूक्ष्म कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों को मेरी बात माननी पड़े। लेकिन नॉर्मल केस में हम कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है और बैठता नहीं है, हम लोग ध्यान में भी बैठते हैं, योग में भी, घर में भी होते हैं, मन भाग जाता है। और ब्रह्मा बाबा भी कोई अलग नहीं था, ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे आपके सबकी तरह घर गृहस्थी वाला था, उनके भी परिवार में युगल थे, 5 बच्चे थे, सब बच्चे बड़े, और बच्चों के अंदर भी ना जो समझ होनी चाहिए सब समझ थी। लेकिन बाबा ने देखा कि जब भी बाबा बैठते हैं कोई भी, तो मन उनका बार बार भाग जाता है, मन चंचल हो जाता है, बिजनेस में भाग जाता है, जसोदा में और बच्चों में, निर्मला में और कभी नारायण में बच्चा था, तो बाबा ने के बच्चों सब जगह जो मन भागता है, तो बाबा ने क्या करा, वो तो मालूम है ना सबको, क्या करा बाबा ने, हाँ एक तो ये डायरी में, 2 डायरी थी, एक डायरी में तो ये पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, आदि आदि। तो मैं देखें मन हमारा अभी भी भागता है, 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल भी हो गए, 25 साल भी हो गए, फिर भी बैठते हैं मन भाग जाता है। लेकिन हमने तो इतना टाइम निकाल दिया, बाबा ने इतना टाइम नहीं निकाला। जैसे ही 1936-37 में हुए और उसके बाद बाबा ने देखा मन भाग रहा है, तो बाबा ने क्या किया, पत्र लिखा, मन को पत्र लिखा, हे मन तू मेरा मंत्री है और मैं आत्मा राजा हूं, लेकिन मैं तुझे ऑर्डर करता हूं, तू मेरी बात नहीं मानता, तू भागता रहता है और मैं आत्मा राजा होकर भी तुम कर्मचारी के पीछे पीछे भागते रही। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को पत्र लिखा कि हे बुद्धि तुम भी मन की तरह भागती रही और तुम दोनों ने मुझे कमजोर कर दिया, भगाते रहे, लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूँ, दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा कि अब मैं कह देता हूँ कि अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूँ, तुम मेरे कर्मचारी हो और राजा के कहने पर कर्मचारी को चलना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इस तरह बाबा ने दोनों को पत्र लिखा और फिर बाबा ने ये भी कहा है, एक तो ये करो, देखो अनुभव करो, और दूसरा साथ साथ क्या करो, रोज रात को दरबार लगाओ सूक्ष्म कर्मचारियों की, मन बुद्धि संस्कार की, आज कितना परसेंट मन ने मेरी बात मानी, आज कितना परसेंट नहीं मानी। तो मन बुद्धि, और जब ये करते हैं तो फिर धीरे धीरे मन और बुद्धि हमारे वश में आ जाते हैं और फिर हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि मन फिर हमारी हर बात को मानता है, उसे मालूम है कि रात को दरबार लगेगी और रात को मेरा मालिक आत्मा राजा पूछेगा कि तुमने मेरी ये बात क्यों नहीं मानी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसीलिए मन और बुद्धि वगैरह शुरू में लगेगा कि अरे आज मैंने 6 बार मन को ऑर्डर किया, उसमें से उसने 2 बात मानी, 4 नहीं मानी। लेकिन जब रात को हम दरबार लगाएंगे और मन को के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे, तो मन, कल अगर तुमने ये नहीं मानी बात तो कल तुम्हें ये दंड मिलेगा। और वो मन को अगर हम दंड देते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो बस मन जो है तुरंत हमारे वश में आने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन को और इस तरीके से चलाओ और आत्मा को क्या अनुभव कराओ। साकार में भी बाबा की फोटो भी बाहर लगी है ना, हम लोग जब आते थे मिले दरवाजे में से आए अंदर बाबा के पास गए तो बस आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस बाबा इतना प्यार से प्रकृति के बीच में देखा, नैनों के बीच में देखा, और बस ऐसी मैग्नेटिक पावर बाबा में होती थी, चुंबकीय शक्ति होती थी कि हम जैसे बाबा की बाहों में खिंच कर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने पहले अपने को पक्का किया, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला, सारे परिवार वालों का पक्का किया। तो बाबा जिसको भी देखता था ना, वो तुरंत ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था और बस बाबा की बाह में खींच के चला आता था। और इतना ही नहीं, और क्या होता था, हम सब विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने अशरीरीपन की प्रैक्टिस की हुई थी तो अशरीरी हो जाते थे। तो ये साथीपन का भाव है, एक स्थूल साथी होते हैं, चलो भाई टहलाते हैं, कंपनी रहेगी, ये साथीपन का भाव कि बाबा साथी एकदम उसे आत्मा को साथी बना लेता था और हम एकदम बाबा की बाह में आ जाते। तो ये साथीपन का एक भाव ये है, स्थूल रीति से भी और सूक्ष्म रीति से भी। और क्या करें, बाबा ने कहा जब ये साथीपन का जितना भाव होता है ना, तो आत्मा जो है फिर देह से न्यारेपन का वो अनुभव करती है बाबा के साथ। फिर बाबा थोड़ी देर में, हाँ बच्चे आओ आओ स्वीट बच्चे, बाबा थपथपाता था और बाबा बस फिर हम लोग जैसे देह में आते थे एकदम, और देह में तो होते ही थे लेकिन देह से जैसे न्यारेपन का अनुभव होता था। और फिर बाबा पूछता था क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आदि आदि जो जो बाबा को पूछना होता था। और उसके बाद मुँह में टोली खिलाई, फिर एक जना जाता था फिर दूसरा आता था पार्टी का, वो भी यही अनुभव करता था, तीसरा आता था वो भी ये अनुभव। तो साथीपन का भाव क्या है, जब हमारी निर्णय शक्ति या जो पहली बात से शुरू किया था जो परख शक्ति है वो हमारी अच्छी होगी, एक्यूरेट होगी। पहले से ही हम लोग ज्ञान में सेंटर पर कुछ दिन ज्ञान में चलते थे, सप्ताह कोर्स करते थे, बहने आते थे रास्ते में बताते थे बाबा पूछेगा और ये करना, तो बस बाबा का भी रकुटी में देखना, नैनों में देखना और एकदम तुम्हें अनुभव देह का भान का रहित होगा। तो इस रीति से जब आते थे और हमें होता था अच्छा ये बाबा है, इसके तन में भगवान आते हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल ज्ञान तो होता था लेकिन बाबा को जैसे देखते थे बस एकदम खिंच के चले आते थे। तो ये परख शक्ति और निर्णय शक्ति, एक तो ये हमें देखनी है और ये परख शक्ति हमारी किस चीज से अच्छी होगी, कैसे होगी, बाबा ने बताया एकाग्रता से। हम लोगों में अभी तक भी, चाहे इतने साल हो गए तो भी, एकाग्रता जितनी होनी चाहिए वो एकाग्रता नहीं है, मन बार बार भाग जाता है। तो इसीलिए वो एकाग्रता होगी जितनी, बस एकाग्रता के साथ साथ तुरंत ही बाबा को जैसे पहचाना और बस विदेही हो गया। तो एक तो साथीपन के लिए एक ये आवश्यकता, एकाग्रता की शक्ति। इसीलिए बाबा कहता है भले हमारा योग लगे न लगे, आज बैठे हैं आधा घंटे बैठे, लेकिन 10 मिनट योग लगा, 20 मिनट मानो नहीं लगा योग, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं लगातार योग लगाते रहे, आज 10 मिनट लगा, कल 15 मिनट लगेगा, परसों 20 मिनट लगेगा, और इस तरह जब योग लगता रहेगा ना, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, उसका दूसरा फायदा, दो शक्तियों की जरूरत है ना, तो एक तो ये परखने निर्णय शक्ति और दूसरी सामना करने की शक्ति। मानो हमने माया को परख भी लिया, ये माया आ रही है, लेकिन अगर हम उसका सामना सफलतापूर्वक नहीं कर सके तो फायदा क्या हुआ, हार गए माया से तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो सामना करने के लिए ये साथीपन की जरूरत है, जो बाबा ने दूसरी शक्ति बताई ना, तो दोनों शक्तियों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम सदा विजयी होते रहेंगे, और जितना जितना विजयी होते रहेंगे उतना उतना जीवन में सफलता पाते रहेंगे, खुशी होगी, आनंद होगा। तो एक ये बात बहुत आवश्यकता है, और क्योंकि हमें बनना क्या है, अल्टीमेटली हमें राज ऋषि राजा भी बनना है। सतयुग में क्या है, यहां पर हम बाबा ने कहा है आप ऋषि भी हो राजा भी हो, कर्मेंद्रियों के राजा हो, और अंदर से मन बुद्धि संस्कार उनसे ऋषि, ऋषि माने पवित्रता। ऋषि के अंदर क्या होता है, जंगल में एकांत में रहता है। इसीलिए बाबा ने दोनों बातें बताई हैं कि एकांत से क्या होता है, हमें एकांत में भी रहना है और संगठन में भी रहना है, दोनों चीज। ये हमारा ब्राह्मण परिवार का संगठन है। तो एकांत में क्या होता है, चरित्र का विकास होता है, संगठन में चरित्र का विकास होता है, और एकांत में बुद्धि का विकास होता है। तो एकांत में, एकांत माने खाली वो एकांत नहीं एक तरफ बैठ गए, बल्कि एकांत माने जो बाबा ने कितने प्रकार के एकांत बताए हैं याद है, बोलो बोलो, हाँ पांच भी है, छह भी है, सात भी है, जितने भी है एक एक करके बोलो, देखो हाँ, एक एक की याद में ही अंत, एकांत। पहला एकांत तो वो है कि जब बाबा को याद करने बैठे हैं उस समय और कोई याद ना है, एकांत। दूसरा प्रैक्टिस ये भी करनी है कि बाहर का एकांत हो, क्यों, क्योंकि बाहर का एकांत अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बाबा ने बोला एकांत भी और संगठन भी। एकांत में बुद्धि का विकास होता है। आप एकांत में बैठ जाएंगे, मुरली थोड़ा पड़ी है तो मंथन चलेगा, विचार सागर मंथन उस मुरली के ऊपर। ये नियम बना लें हम कि जो भी मुरली हम सुनते हैं उसका एक या दो पॉइंट पर हमें विचार सागर मंथन करना है, और वो विचार सागर मंथन एकांत में होता है। और संगठन में क्या होता है, चरित्र का विकास होता है। जब संगठन होता है तो कितनी अटेंशन रहती है अपने ऊपर, कोई ऐसी बात ना करें। जब पति पत्नी होते हैं एकांत कुछ भी करें, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो उनका कितना सावधानी रहती है कि बच्चों पर कोई गलत असर ना पड़े। ये संगठन है हमारा, इसलिए इस संगठन के अंदर कोई भी ऐसी बात ना हो। और क्या चाहिए बाबा ने क्या बताया है, एकांत के साथ और बचत होती है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है एक संकल्प की इकोनॉमी, समय और संकल्प, वो एकांत भी जरूरत है। रोज हम इन पांच इन सब एकांत का अपने ऊपर पांच पांच दस दस मिनट जरूर निकालें, अभ्यास करें। तो जब एकांत में होंगे तो उसमें क्या होगा, संकल्प कोई भी हमारे चलते हैं उन संकल्पों की एक अपनी इकोनॉमी और समय की भी इकोनॉमी, खजानों की इकोनॉमी, जो बाबा ने इतने सब और भी खजाने बताए ना, समय संकल्प भी है और क्या है, श्वास की है और ज्ञान योग वचन वाणी की इकोनॉमी, साथ साथ कर्मों में भी देखो, दादियों को देखो कहीं भी कम से कम भी जितना होता है उतना बस वर्णन करते हैं और फिर एकांत में चले जाते हैं। तो इस तरीके से एक ये देखना है हमें कि हमें राजा भी बनना है इन कर्मेंद्रियों का, ये है बाबा कहते हैं, और ऋषि भी बनना। ऋषि माने बिल्कुल एकांत का भी अनुभव हो, और ऋषि माने क्या है, मन, जैसे एक वो है ना, एक दरबार में, राजा के दरबार में एक सन्यासी आया, बहुत छोटा सा दान पात्र लेके आया था, महाराज मुझे दान दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, बहुत छोटा दान पात्र है, कोई बात नहीं। मंत्री को बोला जाओ कोष में से निकाल के इसमें डालो। वो ले आया, काफी अशरफी धन दौलत लाया, सोना चांदी, वो भरा नहीं, दोबारा लाया, तीसरी बार लाया, चौथी बार लाया, वो भरता ही नहीं था, देखने में छोटा था भरता ही नहीं था। तो उसने जब बार बार कहा, देखा, तो राजा ने कहा महाराज जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ गुह्यता है, कोई बात है। तो उसने कहा हाँ महाराज इसमें गुह्यता है। क्या गुह्यता है, महाराज ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, मनुष्य की खोपड़ी होती है ना, उसका पात्र बना है और खोपड़ी में यह मन है उसका। तो मन जो है कभी भी तृप्त नहीं होता, मन के अंदर एक इच्छा होती है पूरी करो, दूसरी इच्छा दूसरी करो, चार और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, चार पूरी करो आठ इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है कभी भी तृप्त नहीं होता। तो इसीलिए हमें मन को सबसे पहले ये जीतना है, और जीतते हुए साथी भी बने और साक्षी, क्योंकि जैसे ही हम साथी बनाने जाएंगे वो साथी के अंदर डूबते जाएंगे बहुत वो, और साक्षी बनकर जैसे होंगे स्थिति में, तो जब साक्षी हो जाएंगे तो कई चीजों में साक्षी हो जाते हैं, कई चीजों में साथी हो जाते हैं। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा है हर एक चीज में साथी भी हो और हर एक चीज में साक्षी भी हो। तो एक ये है। एक बार गुलजार दादी का, कुछ समय पहले की बात है, दादी ने बताया था कि ध्यान में मैं गई थी तो बाबा ने बताया था बच्चों को मैं एक सर्टिफिकेट तो देता हूं। कौन सा सर्टिफिकेट, स्नेह का, और बच्चों में विकार तो जीते हैं काफी हद तक, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बहुत आते हैं। तो विकारों पर तो विजय प्राप्त की है, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो अब बच्चों को व्यर्थ के ऊपर, व्यर्थ को व्यर्थ न समझें, व्यर्थ को विकारी संकल्प समझे। व्यर्थ आता है, विकारी अगर आता है तो मन में ग्लानि होती है एकदम, ये क्यों आ रहा है, ये तो इतने वर्ष से मैं ज्ञान में चल रही हूं या चल रहा हूं, ये तो मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया, अब क्यों आना चाहिए। नहीं, बाबा ने कहा व्यर्थ। तो व्यर्थ का वो सुना है ना, एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था पत्थर की, तो पत्थर की मूर्ति बनाता था, पत्थर की मूर्ति बना के वो मतलब सभी तारीफ करते थे, अरे ये तो तुम बहुत बढ़िया मूर्ति बना रहे हो। तो वो मूर्ति बना के कि क्या व्यर्थ, क्या बढ़िया, बस मैं तो सिर्फ इतना करता हूँ, पत्थर लिया उसके बाहर बाहर जितना भी किनारे व्यर्थ होता है उस व्यर्थ को निकाल देता हूँ, बस मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है, सिर्फ मैं व्यर्थ निकालता हूँ। समझे ना बात को। तो ऐसे ही हम सब संपूर्ण मूर्तियां हैं, लेकिन हमें ये व्यर्थ निकालना है। जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ बातें आती हैं, इनको निकालना है, तो उससे क्या होगा, हम संपूर्ण मूर्ति हमारे अंदर से प्रत्यक्ष हो जाएगी। मुझे मामा की बात याद आती है, एक गौर से सुनना, शायद आप लोगों ने सुनी भी हो, 65 की बात है, 1965 जब मामा ने शरीर छोड़ा, तबीयत ठीक नहीं थी मालूम ही है आपको, और मामा ने बस तबीयत खराब होती जा रही थी, शरीर छोड़ा, ऊपर गए मामा सूक्ष्म वतन में, तो सूक्ष्म वतन में तब साकार ब्रह्मा बाबा तो यहीं थे, बाबा तो 69 में शरीर छोड़ा है, मामा ने पहले शरीर छोड़ा। तो जब मामा ऊपर गए तो वहाँ सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने पूछा, मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आए? तो मामा ने पहले तो देखा बाबा की तरफ, फिर कहा कि नहीं बाबा मैंने तो नहीं करा। क्यों बच्ची, कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं करा? नहीं। तो मामा चुप रहे, तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा हुआ है, और ब्रह्मा बाबा भी योग कर रहे हैं, सभी बच्चे मिलके योग कर रहे हैं, जाओ तुम शरीर में प्रवेश करके थोड़ी देर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। बाबा ने मामा को नीचे भेजा, मामा नीचे आई, थोड़ी देर तक मामा नीचे रही, फिर उसके बाद मामा ऊपर गए। तो बाबा ने पूछा बच्ची करके आई कर्मातीत स्थिति का अनुभव? तो मामा ने कहा नहीं बाबा मैंने तो नहीं किया। अरे अभी भी नहीं किया तुमने, क्यों बच्ची? तो बाबा मैं जब गई तो शरीर में मैंने प्रवेश करने का प्रयत्न किया, और शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, उसमें कोई चुरपुर नहीं हुई, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, तो इसीलिए मैं तो कर्मातीत कर्म करती, कोई कर्मों से अतीत हो जाती, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकी मैं, इसीलिए मैं फिर आ गई आपके पास। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया तो अभी परमधाम तो जा नहीं सकती, अपने निवास स्थान जहाँ से आत्मा जिस स्थिति में आई है, और तुम्हारे लिए नहीं सृष्टि की सभी आत्माओं के लिए है ये, हम सभी के लिए ये वैलिड है कि हम जिस स्थिति में परमधाम से आए हैं पवित्रता की, हमें उसी स्थिति को पुनः प्राप्त करना है पुरुषार्थ करके, और जब तक वो स्थिति हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम परमधाम नहीं जा सकते। इसीलिए ब्रह्मा बाबा अभी भी सूक्ष्म वतन में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे संपूर्ण होके आए और फिर हम सब परमधाम चलेंगे। तो देखो अंत तक बाबा जैसे हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो हमें अब दो बातों का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए अभी हमें एक तो ये करना चाहिए कि हमें सब तरफ से समेटते रहना चाहिए। जहां कहीं बिजनेस में समेटा है, घर गृहस्थी में है, जिस जगह हमने, क्योंकि ये नियम है, और आप सब भक्ति मार्ग में भी हम सब ने सुना है कि जब कोई आत्मा बीमार है और शरीर छोड़ने वाली होती है, लेकिन कई बार कई कई घंटों तक वो शरीर नहीं छोड़ पाती। क्यों? क्योंकि किसी की याद होती है, कोई उसे याद कर रहा होता है, वो बेटा है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी, तो जब वो आते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बात करी, फिर आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो अंत समय हमें कोई भी याद ना आए, इसीलिए जब तक हम समेटेंगे नहीं, तब तक हम, हमारी भी यही दुर्गति होगी। तो इसीलिए अभी आवश्यकता यह है, हर चीज से हम समेटते रहे। अगर हमें विल करनी बाकी है, विल कर दे, अगर कुछ करना देना बाकी है, लेना बाकी, कुछ भी हिसाब किताब सब चुकतू कर दे, केवल धन के ही नहीं, संबंधों के भी, हर चीज के हिसाब किताब हम चुकतू कर दे। पहली बात एक ये बहुत जरूरी, और ये हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा। ब्रह्मा बाबा ने भी ना, बस मैंने बताया कि मैं 62 में इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, बाबा ने भेजा, 67 में पास किया, और बाबा ने फिर मेरी पोस्टिंग उधर आसाम करवाई। तो मैं ONGC में इंजीनियरिंग करने के बाद आसाम गया। आसाम में वहाँ पर बाबा ने अपना सेंटर खोला, और बहुत आत्माओं का वहाँ उद्धार हुआ। बाबा ही करण करावन आ रहा है, बाबा ने करवाया। तो उसके बाद वहाँ से बाबा ने जब सबका वो किया, तो जनवरी का महीना था, मैं तो वहाँ 67 में गया था पास करके। तो बाबा ने बस मुझे जैसे मधुबन में बुलाया, जाओ बच्चे एकाएक आओ, जाना तो मुझे देहरादून था, वहाँ म्यूजियम बनने वाला था, बहनों ने बुलाया था, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे पहले यहाँ आओ और तुरंत आओ। तो बस जनवरी 12-13 तारीख को ही छुट्टी ली, और हम अपने लौकिक पिताजी के साथ यहाँ 17 जनवरी को पहुँच गए 69। और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का इन आंखों से मौका मिला। देखा, क्या देखा? वैसे तो बाबा धीरे धीरे समेटते जा रहे थे 62 से, लेकिन उन अंतिम दो दिनों में बाबा ने बिल्कुल समेट लिया था। और बाबा ने वो समेट करके, हम बाबा के सम्मुख जाते थे, बस हमेशा तो बाबा पूछता था बच्चे, हाँ क्या पूछना है, बताते थे। लेकिन उन अंतिम दो दिनों में बाबा ने कोई पूछा ही नहीं एक अक्षर भी, और कहा बच्चे ये पूछने आए हो तुम, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था की ये निशानी है, अगर हम सच्चे अर्थों में साथी भगवान का बनने चाहते हैं, तो पहली निशानी ये है कि मन की बात वो आत्मा पढ़ लेगी। तो ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, हम 17 और 18 तारीख को 5-6 बार बाबा के सम्मुख गए, हर बार जाते थे, बाबा देखते थे, दृष्टि दी, और बाबा अच्छा ये पूछने आए हो बच्चे, और ये पूछ करके बाबा बता देते थे और समाधान कर देते थे उस बात का। तो एक बात तो ये है कि, और मुरली में भी है, कर्मातीत अवस्था की ये निशानी है कि दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ के उसका समाधान कर देंगे। और दूसरा बात कि आगे आने वाली घटनाओं का आभास हो जाएगा, उस दिन बाबा ने यीशु दादी को बोल के सारे पत्रों के उत्तर लिखा दिए। जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है वो बिल्डिंग लेनी थी, कई दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, वो बाबा ने क्लियर कर ली। रोज बाबा रात को 8:45 क्लास कराते थे, उस दिन बाबा ने बोला आज बाबा 7 क्लास कराएगा, सब भोजन करके आ जाओ। तो देखो बाबा ने सब पहले से ही भोजन करके सबको बोला, सब आ गए। और उस दिन बाबा ने जो क्लास कराई ना, एक बार भी ना बाबा को खांसी आई, ना एक बार भी बाबा को वो कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि आत्मा जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है फिर उसे कोई भी कर्म भोग जो शरीर के होते हैं उन कर्म भोगों के ऊपर वो तुरंत विजय प्राप्त कर लेती है, और जो कर्म भोग उसे फिर भोगने नहीं पड़ते। नहीं तो बाबा की तबीयत थोड़ा उस दिन खराब चल रही थी, खांसी भी आ रही थी, लेकिन पूरी मुरली में बाबा को एक बार भी न खांसी आई न कफ साफ करने की जरूरत पड़ी। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये शरीर का पेपर हमारा अंतिम पेपर है। दादियों को देखा, बाबा को देखा, मामा को, सबको देखा, इसीलिए ये शरीर का जो भी पेपर अंत में हमें चुकतू करना है उसके लिए हमें एकदम शरीर से डिटैच होने का, न्यारा होने का ये अभ्यास लगातार करते रहना है। तो इसीलिए एक ये अनुभव किया, और साथ ही साथ दूसरा क्या अनुभव किया इसमें, बाबा ने ना ये मन जीते जगत जीत तो हो गए बाबा कि मन की बात मैंने बताया, पूरी की पूरी बात बाबा समझ गए जब भी बाबा के सामने जाते थे। लेकिन उस दिन बाबा ने क्लास कराई, पहले क्लास करा ली थी, बाबा को मालूम था आज बाबा से मेरा अंतिम मिलन है मिलन, और उसके बाद बाबा घर कमरे में गए दादी के हाथ में हाथ, और ये साथीपन का अनुभव जो बाबा ने कराया, दादी कहती है मैं भी साक्षी होकर के देख रही थी कि किस तरीके से बाबा एकदम दृष्टि दे रहे हैं, और ये भी अनुभव कर रही थी कि बाबा का हाथ ढीला पड़ता जा रहा है और जैसे कि एकदम हाथ छूट गया। तो ये साथी और साक्षीपन ये दोनों ऐसी अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाओं का अनुभव अंत में हमें सबको करना है, क्योंकि साक्षी होकर के जाएंगे। अगर कहीं पर भी मन टिका रहा, कोई भी लौकिक संबंधी मित्र रिश्तेदार, तो भी हमारे प्राण तन से नहीं निकलेंगे ठीक से, और वहां पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और अगर साथीपन का बाबा का पूरा अनुभव नहीं हुआ तो वो साथीपन की स्थिति, एक तो ये और दूसरा शरीर का साथीपन, इस साथी को छोड़ना ये सबसे बड़ी बात है। बाबा को तो पहले से आभास हो गया था कि आज मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूं, इसीलिए बाबा ने जल्दी क्लास कराई, जल्दी सबको भोजन कराया, दादी को भी छुट्टी दी, और उसके बाद बाबा का ये शरीर जो है ना 3 तक रखा रहा। लेकिन वो बाबा का शरीर जो है जो अंतिम समय तक बिल्कुल वैसा ही रहा। अंतिम समय बाबा का, जब बाबा अंतिम 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को संस्कार किया गया। लेकिन बाबा के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई काला नहीं पड़ा, ये प्रकृति जीत का लक्षण है। मन जीते जगत जीत तो है, लेकिन प्रकृति जीते जगत जीत, हमें इस प्रकृति को भी जीतना है, ये 5 तत्वों को। इसीलिए बाबा ने खास भारतवासियों के लिए कहा है, क्या कहा है, कि इन ये भारतवासियों का जो शरीर छूटेगा वो प्राकृतिक आपदाओं से छूटेगा, ये प्रकृति पांच तत्वों का बना हुआ, और विदेश वालों ने तो इतना सुख भी देखा नहीं, दुख भी नहीं, तो वो तो एक बम गिरा चले जाए, लेकिन हम लोगों का, भारतवासियों का जो शरीर छूटना है, ये अर्थक्वेक, फ्लड, फैमिन, अकाल, सुनामी, ये सारे जो पांच तत्व हैं, ये अपनी बहुत वो दिखाएंगे। तो इन तत्वों पर भी हमें अपने विजय प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे? रोज पांच तत्वों को हम कम से कम भी 5 से 10 मिनट योगदान जरूर करें, और ये जो तत्व है ना, इन तत्वों को हम अपने संस्कारों से मिलाकर के चलते रहे, और इन तत्वों को हम ये करें कि इन तत्वों से हम अपने संस्कार मिलाएं, जल से हम संस्कार मिलाएं, एडजस्टमेंट का, जल हर जगह एडजस्ट हो जाता है, ऐसे ही कोई भी परिवार में अलौकिक अलौकिक में ऐसा ना हो जो हम कहें कि इससे एडजस्ट होके नहीं चल सकते। पृथ्वी का संस्कार क्या है? दातापन का, पृथ्वी से हर चीज मिलती है, तो इस तरीके से हम भी, चाहे भोजन है चाहे अन्न है, कुछ भी चीज है, वो पृथ्वी से हम बस वैसे ही करके चलते रहे, हर एक को हम देते रहे। देते क्या रहे? सिंपली प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, जिसमें कुछ खर्चा नहीं है। तीसरा, आकाश से, बेहद का आकाश है, तो सब के लिए हमारा बेहद की भावना हो, हर एक के लिए क्षमा की भावना हो, किसी से भी बदला लेने की भावना ना हो। चौथी बात, वायु से। वायु का क्या है? वायु देखो हल्की होती है, सबसे बड़ी बात है वायु में, वायु ऊपर उठती है, पृथ्वी नीचे हर चीज को खींचती है, विपरीत संस्कार होते हैं, लेकिन ये विपरीत संस्कार सदा साथ रहते हैं, झगड़ा नहीं करते। इसीलिए लौकिक अलौकिक परिवार में किसी से विपरीत संस्कार भी हो, हमें एडजस्ट होके सबसे चलना है, कोई एक तरफ खींचे कोई दूसरी तरफ, तो हल्के सदा रहे, कभी भी किसी से भारी ना हो। और पांचवा, सूर्य, अग्नि। अग्नि में क्या संस्कार होता है? अग्नि हर चीज का रूप बदल देती है, अग्नि में कोई चीज डालो, ऐसे ही अग्नि की तरह है, बस हमारा ज्वालामुखी स्वरूप बाबा जो कहता है ऐसा हो कि हम सबको रूप बदल सके, कोई भी आए रोता हुआ आए, हंसता हुआ जाए, ऐसा हो उसका रूप बदल जाए, तब फिर हम तत्वों को भी अपने अधीन कर लेंगे। अब ब्रह्मा बाबा ने भी जैसे तत्वों को अधीन करके शरीर छोड़ा, ऐसे हम सब भी मन को भी और तत्वों को भी अधीन करके शरीर छोड़ सकेंगे, और तब अल्टीमेटली विजय प्राप्त करके हम सब अपने घर परम धाम चलेंगे। ओम शांति।
का साथ है बाबा तो हर एक बात। कितना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा, सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा, जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा।